कि कृपया संडे फीस्ट रविवार सत्संग कार्यक्रम में बैठ जाए। हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय के बीच में हम रविवार सत्संग कार्यक्रम संडे फीस्ट मनाते हैं। इस कार्यक्रम में सुबह 10:30 से 11:00 तक कीर्तन होता है, 11:00 से 12:00 तक प्रवचन होता है और 12:00 से 12:30 महाआरती होता है भगवान श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का। 12:30 बजे सबके लिए महाप्रसाद होता है। तो हम सबसे विनती करते हैं कि कृपया बैठ जाए और प्रवचन का लाभ उठाए। आज हमारे साथ प्रवचन देने के लिए उपलब्ध हुए हैं श्रीमान श्री गौरचरण प्रभु। श्री गौरचरण प्रभु जी ने अपना इंजीनियरिंग का डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2009 में इस्कॉन चौपाटी जो कि राधा गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पे पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा चालू किया। उस पश्चात वे गोवर्धन इको विलेज गालतरे यहाँ पर आए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अनेकों सेवाएं की है। विशेष रूप से वे कंस्ट्रक्शन में उनका अमूल्य सहभाग रहा है। अभी वे HR डिपार्टमेंट और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उसमें भी महत्व का रोल निभाते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी हमें प्रवचन देने के लिए उपलब्ध है। तो हम पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोल के प्रभु जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्णा। तो हम थोड़ा कीर्तन करते हुए प्रवचन को आरंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन चारी, यमुना तीरा वन, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बोलिए हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सब लोग बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधे प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कार्तिक मास महामहोत्सव की श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। सो आप सभी लोगों का यहाँ पर आज के संडे फिश कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज बहुत ही पावन दिन है और एक पावन महीने का शुरुआत भी है। तो आज शरद पूर्णिमा महामहोत्सव हम कुछ ही समय में यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो हमारे ऑल्टर है यहाँ पर दोपहर को 2 बजे से यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के डेकोरेशंस सजावट की जाएगी जो शाम को 5:30 बजे खुलेंगे। तो भगवान का एक दिव्य स्वरूप हमको यहाँ पर दिखने मिलेगा इस दिव्य सजावट के द्वारा। मतलब ये ऑल्टर अभी जो आप देख रहे हैं मार्बल और लकड़े से सजा हुआ है वो शाम को ये वृंदावन बन जाएगा जिसमें पूर्ण चंद्रमा भी दिखाई देगी। अभी तो चंद्रमा नहीं है तो पूर्ण चंद्रमा भी आ जाएंगे ऑल्टर में और वृंदावन भी यहाँ पर दिखेंगे। यमुना नदी आ जाएगी सब कुछ इस ऑल्टर में शाम को आपको देखने मिलेगा। और भगवान मतलब ये सजावट जो है वो भगवान की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि भगवान उस सजावट का शोभा बढ़ाते हैं। भगवान उस सजावट के बीच में स्थित है इसलिए वो सजावट की शोभा और बढ़ जाएगी। तो शाम को ये देखने मिलेगा शरद पूर्णिमा का ये जो दिव्य दर्शन है। साथ ही साथ आज शाम से हम यहाँ पर कार्तिक मास की जो शुरुआत है दामोदर अष्टकम गाते हुए भगवान दामोदर भगवान श्री राधा वृंदावन बिहारी इनको दीप दिखाएंगे। घी दीप दिखाना चालू कर देंगे। ऐसे कहा जाता है कि भगवान को हम कोई छोटी सी भी सेवा कर दे तो भगवान हमारे पूरे जन्म जन्मांतरों के जो पाप कर्म है उसको नष्ट कर देते। तो इसे कहा गया है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे बोलते हैं तो श्री गोपाल गुरु गोस्वामी जी वो अपने नाम व्याख्या में लिखते हैं हरति त्रिविदम तापम जन्म कोटि शतोद्भवम पापम च हस्तात् हरे इति शब्द्यते। तो इसका मतलब है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे ऐसा जब बोलते हैं तो हरति त्रिविदम तापम, जन्म कोटि जन्म कोटि कोटि जन्मों से हमने जो पाप कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और त्रिविद ताप मतलब आदि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हो जाते मतलब ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएंगे। आदि दैविक मतलब देवताओं के द्वारा जो क्लेश आते हैं जैसे भूकंप सुनामी ऐसे जो कष्ट आते हैं, आदि भौतिक मतलब बाकी जीवात्माओं से जो हमको दुख मिलता है आदि भौतिक, आध्यात्मिक हमारे ही शरीर से हमको जो कष्ट होती है जैसे कभी कभी हम खाना खाते समय हमारे दांत के बीच जीव आ जाती है तो हम किसे हम डांटेंगे? कोई डांटने के लिए हमको खुद को डांटना पड़ेगा क्योंकि दांत अपना दांत है अपना जीव है। तो ये तीन क्लेश तो रहेंगे ही भौतिक जगत में, जब तक रहेंगे तीन क्लेश तो आते रहेंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं हरे, ऐसे शब्द जब भगवान का नाम हरे ऐसे उच्चारण करते हैं तो ये भगवान हमसे हर ले, ये जो ताप है ताप आएंगे लेकिन हम इससे हम विचलित नहीं होएंगे, डिस्टर्ब नहीं होएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हरे, भगवान का नाम ले तो जन्म कोटि शतोद्भम, जन्म जन्मांतरों के जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। तो हाँ, तो इसलिए छोटा सिर्फ हरे नाम लेने से पूरा पूरा गोपाल गुरु गोस्वामी ने तो पूरे 16 शब्दों का अर्थ दिया है। मतलब अर्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का यही अर्थ है। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ एक है कि हम राधा रानी कृष्णा से बच्चे की तरह चीखते हुए चिल्लाते हुए पुकारते हैं, हे राधा रानी हे कृष्ण मुझे अपने सेवा में लगाओ, मुझे कुछ सेवा का अवसर दो, ये है जनरल मीनिंग। लेकिन बहुत सारे आचार्यों ने जैसे जीव गोस्वामी हो गए, रूप गोस्वामी हो गए, रघुनाथ दास गोस्वामी हो गए, गोपाल गुरु गोस्वामी हो गए, इन सब आचार्यों ने हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते उन्होंने जो आस्वादन हरे कृष्ण महामंत्र का जो आस्वादन उन्होंने किया है, उनको जो साक्षात्कार हुआ है, उस साक्षात्कार से उन्होंने अपने अपने शब्दों से हरिनाम व्याख्या दी है। तो ऐसे गोपाल गुरु गोस्वामी का उनका खुद का व्याख्या है जिसमें वो कहते हैं कि हरे का मतलब ये है, मतलब ये है कृष्ण का मतलब ये है, राम का मतलब ये है। जनरली जब हरे हरे हम बोलते हैं हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हे राधा रानी हे कृष्ण मेरे जीवन के सब पापों को हर लो और इस त्रिविध ताप से मुझे बचा लो, मुझे शुद्ध करो, ताकि ताकि क्या, ताकि जब कृष्ण का नाम लेते हैं कृष्ण कृष्ण मतलब क्या, सर्व आकर्षित इति कृष्ण, कृष्ण मतलब हमको आकर्षण करते हैं और आकर्षण करके क्या करते हैं न मतलब हमको आनंद देते हैं, वो आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद घन घन स्वरूप वो कृष्ण भगवान है। तो जब हम उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, आनंद का अनुभूति होगा। लेकिन पास तो जाना पड़ेगा ना, दूर खड़े रहकर थोड़ी आनंद का अनुभूति होगा। तो इसलिए भगवान कहते पहले हरे कृष्ण मंत्र जब हरे नाम लेते हैं तो हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हम पूरी पूरी प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध होते ही कृष्ण हमें आकर्षित करते हैं उनके तरफ। जैसे एक लोहा लेंगे, लोहा में अगर जंक लग गया तो वो चुंबक के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो पाता, चुंबक के प्रति आकर्षण नहीं हो पाता हो, तो उस लोहे को केरोसिन के अंदर डालकर या कोई रसायन के अंदर डालकर उसे उसके ऊपर का जो जंक है उसे निकालना पड़ता है। जब जंक निकल जाता है तब वो लोहा चुंबक के प्रति आकर्षित हो जाता है। चुंबक के प्रति आकर्षित होकर क्या हो जाता है, वो लोहा भी चुंबक बन जाता है, फिर वो लोहा दूसरे लोहे को अपने और आकर्षित कर सकता है। उसी प्रकार जब हम हरे का नाम लेते हैं तो वो एक रसायन की तरह हमारे ऊपर जो जंक लगा हुआ है, जंक लगा हुआ है, वो जंक पूरा निकाल देता है। और फिर हम कृष्ण का नाम लेते ही उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके पास जाकर उनकी जो वो कृष्ण जो आनंद स्वरूप है तो वो आनंद हम भी अनुभूति करते हैं। लेकिन वो आनंद अनुभूति करके क्या, बस एक बार आनंद की अनुभूति कर ली तो बस हो गया है कि नहीं? एक बार हमने कुछ रसगुल्ला या गुलाब जामुन या संदेश पेड़ा खा लिया तो एक बार खा लिया तो बस हो गया, बस मैंने आनंद चख लिया, बस मुझे और नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है ना। एक बार हमने टेस्ट कर लिया तो बार बार जाएंगे जहां पर महाप्रसाद मिलता है, ताकि वो बार बार खा सके, है कि नहीं? हाँ, एक बार बस हो गया रसगुल्ला, बार बार खाना है ना। तो उसी प्रकार जब हम कृष्ण का नाम स्मरण करके कृष्ण के पास जाकर जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो आनंद की अनुभूति करने के बाद हमें क्या लगता है, बार बार मैं इस आनंद को अनुभव करते रहूं, सदैव इस आनंद को मैं लूटता रहूं, गुलाब जामुन खाता रहूं, रसगुल्ला खाता रहूं, संदेश बर्फी खाता रहूं, लेकिन क्या करे, ये शरीर उसका साथ नहीं देगा। 10 गुलाब जामुन खा लिए तो बस हो गया, पेट भर गया, या फिर डायबिटीज हो जाएगा। लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक शरीर है, भौतिक शरीर है, उसका कुछ लिमिटेशन है, रेस्ट्रिक्शन है, इसलिए ये जो है मतलब हमें इतना खाने से पेट भर जाता है या बस ऊब जाते हैं। लेकिन अगर हमें आध्यात्मिक शरीर मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल भौतिक जगत में भी देखेंगे, हम मिठाई एक प्रमाणिक मात्रा पर खा सकते हैं, बस उसे ज्यादा नहीं खा सकते। लेकिन चींटी देखिए, उसका शरीर इतना छोटा है लेकिन कितना भी वो शक्कर खा सकता है, उसे कुछ नहीं होगा। चींटी को कभी डायबिटीज होते हुए सुना है? क्यों? उसका शरीर ऐसा है, इतना चींटी, इतना वो मिठाई खाएगा, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक भौतिक शरीर में ऐसी ताकत है तो हमारे शरीर में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे शरीर भगवान ने ऐसे बनाया। लेकिन जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उनका हरि कथा हरि गुणगान कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं, रात दिन 24 घंटा जब सुनते रहेंगे, तो भगवान कहते हैं राम का असर पड़ेगा। राम मतलब क्या? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि, मतलब उस आनंद कृष्ण नाम लेकर भगवान के पास जाकर वो जो आनंद की अनुभूति मिली है, वो आनंद राम नाम लेकर हम भगवान से ये पुकार ये कह रहे हैं कि भगवान मैं सदैव इस आनंद में गोते खाता रहूं, स्विमिंग करता रहूं। वो क्या है शिक्षाष्टकम का आखिरी श्लोक? नहीं, तुलसी महारानी, तुलसी आरती का आखिरी श्लोक, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा येन भासी। इसका मतलब क्या? राधा और गोविंद के प्रेम में सदा मैं स्विमिंग करता रहूं, गोते खाता रहूं। इसका मतलब मैं सदैव मुझे आनंद मिलता रहे। तो राम का मतलब यह है कि हम भगवान को कह रहे हैं हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधा रानी, मैं सदैव आपके ये जो प्रेम भरे जो लीलाएं हैं, आपके जो ये सुंदर मधुर जो आपके जो नाम रूप गुण लीला ये सब कुछ है, इसे मैं सदैव आनंद लेता रहूं इसमें। तो इस प्रकार से ये भगवान का जो स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य नाम रूप गुण लीला है, ये है। तो हरे कृष्ण नाम से हम ऐसा कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो आज का जो लीला है, आज जो शरद पूर्णिमा के जो कृष्ण भगवान ने जो लीला की है, वो सबसे सर्वोच्च माधुर्य लीला, मतलब माधुरी लीला की पराकाष्ठा है वो। तो इसमें ऐसा कहते हैं, श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनेर गोपीर गोपीनाथ श्रीय स्तुनः। तो जब भगवान कृष्ण श्याम सुंदर अपने मुरली लेकर वंशी वट पे खड़े रहकर जब वो फिफ्थ नोट, मतलब पांचवें स्तर पर जब वो अपने वेणु बजाते हैं, तब क्या होता है, सब गोपियां कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती है। अपने घर के जो भी कार्य है वो सब छोड़कर कृष्ण की ओर भागने लगती है। कोई गोपियां घर पे वो छास मत रही, दही मत रही है माखन निकालने के लिए, कोई गोपियां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, कोई गोपियां अपने पति की सेवा कर रही है, कोई गोपियां गाय से दूध निकाल रही है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के गोपियां अलग अलग सेवा कर रही है। लेकिन जैसे ही उनके कान प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव शरोरुहम, जब ये कान के जो ये रंध्र है, जो ये छेद है इससे जब भगवान की नाम रूप गुण लीला या भगवान का जो वेणु का जो माधुरी है वो जब घुसता है तो क्या होता है, तो कृष्ण आकर्षित, गोपियां जीवात्मा आकर्षित हो जाती है, गोपियां राधा रानी सब आकर्षित हो जाती है और कृष्ण के प्रति दौड़ने लगती है। और वहां पर जाकर कृष्ण को किस लिए जाती है, वो उनको स्वयं को आनंद लूटना है, क्या करना है उनको, कृष्ण को संतुष्ट करना है। कैसे कृष्ण को संतुष्ट करना है, सेवा, किस प्रकार का सेवा, वो तो रासलीला में फुल जो आज के रात के जो चंद्रमा है, ऐसे कहते हैं कि आज का जो चंद्रमा है ऐसे चंद्रमा पूरे साल में नहीं होती, इतना माधुर्य, इतना पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण लाइट, पूर्ण माधुर्य, पूर्ण शीतलता के साथ चंद्रमा प्रकट होता है। और इस शीतल चंद्रमा में भगवान कृष्ण अपने प्रिय गोपियों के साथ लीला करते हैं, नृत्य करते हैं वृंदावन में। तो गोपियां क्या उस वृंदावन के इस पूर्ण चंद्रमा में गोपियां वृंदावन का सौंदर्य देखने जाते हैं या कृष्ण का सौंदर्य देखने जा रहे हैं ताकि उनके आंखों को उस माधुर्य का रस आस्वादन कर सके, क्या इसके लिए जा रहे हैं? नहीं, वो किस लिए जा रहे हैं ये सुनकर बहुत ही हमें पता चलेगा, क्योंकि लोग सोचते हैं कि रासलीला मतलब गोपियों के साथ कृष्ण ने लीला की है, ये कैसी लीला है, ये ना दूसरे स्त्रियों के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं, ये कैसी लीला है, ये अधार्मिक नहीं है, धार्मिक तो नहीं है, ऐसे लोग सोचते रहेंगे। लेकिन कृष्ण भगवान का जो ये रासलीला है सर्वोच्च लीला है ये, जिसमें जिसे एक सोने के साथ तुलना की जा सकती है, ये काम वासना नहीं है। भौतिक जगत में जैसे एक एक लड़के का लड़की के प्रति या लड़की का लड़के के प्रति जो आकर्षण होता है उसे एक लोहे के साथ तुलना कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण और गोपियों के प्रति जो आकर्षण है उसे सोने के साथ तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर बताया गया है कि कृष्ण और गोपियों के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण क्या देखकर गोपियों से और राधा रानी से आकर्षित होते हैं, उनका एक भाव है। क्या भाव है? हो सखी भाव। ये क्या है सखी भाव? सखी भाव मतलब गोपियां देखते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें वर्णन किया गया है, अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट तासबार प्रेम देखी कृष्ण हय तुष्ट। इसमें ऐसा कहा गया है कि गोपियां देखते हैं, एक राधा रानी देखती है, अरे ये गोपी कृष्ण के पास जाकर सेवा कर रही है और कृष्ण को इस गोपी द्वारा जो सेवा प्राप्त हो रहा है उससे वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये देखकर राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। मतलब उसे द्वेष नहीं होता राधा रानी को, अरे कृष्ण कृष्ण इस गोपी को अपना प्रेम दे रहे हैं, इस गोपी को कृष्ण आलिंगन कर रहे हैं, इस गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं। नहीं, राधा रानी देखती है, अरे ये गोपी आगे जाने दो, और दूसरे गोपी देख रहे हैं, अरे वो गोपी आगे जाने दो, राधा रानी आगे जाने दो, कृष्ण को सेवा करने दो, कृष्ण को संतुष्टि प्रदान करने दो। जब ऐसे एक दूसरे के साथ अन्योन्य विशुद्ध प्रेमे करे रस पुष्ट, मतलब एक दूसरे को आगे आगे कर रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं कर रहे हो, एक गोपी दूसरे गोपी को आगे कर रही है, राधा रानी दूसरे गोपी को आगे कर रही है और दूसरे गोपी राधा रानी को आगे कर रही है, किस लिए? कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए, कृष्ण की जो संतुष्टि है उसको पोषण भरण करने के लिए, ज्यादा और संतुष्टि बढ़ाने के लिए। जब ये देखते हैं और उससे उनको आनंद मिलता है, उससे उनको तृप्ति मिलती है, वो देखकर कृष्ण और संतुष्ट होते हैं और कृष्ण की संतुष्टि देखकर और राधा रानी और गोपियों की प्रेरणा बढ़ती है, गोपियों को और आगे बढ़ाते हैं वो। तो ये है रासलीला। रासलीला मतलब ये नहीं कि राधा कृष्ण और गोपियां जाकर नृत्य कर रहे हैं, रासलीला मतलब सब गोपियां कृष्ण की संतुष्टि की और कृष्ण के दूसरे गोपियों को आगे करते हुए, राधा को आगे करते हुए, गोपियों को आगे करते हुए वो कृष्ण को आनंद देखना चाहते हैं और राधा रानी बाकी गोपियों को आगे करते हुए कृष्ण को आनंद देखना चाहती है। कृष्ण इनके आनंद को देखकर वो और उनका आनंद और बढ़ जाता है। मतलब राधा रानी और कृष्ण, गोपियां और कृष्ण, इनका आनंद के बीच में एक दिव्य स्तर पर क्या चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है। राधा रानी देख रही है कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है और उससे उसका राधा रानी संतुष्ट हो रही है। कृष्ण देख रहे हैं अरे राधा रानी संतुष्ट हो गई और उसका कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है, उसको देखकर राधा रानी का और आनंद बढ़ रहा है। तो देखिए इसके बीच में क्या दिव्य स्तर पर एक कंपटीशन चल रहा है। तो ये है असली महत्व में ये रासलीला। तो इस भौतिक जगत में भी हमें भी इस रासलीला को, ये इस रासलीला के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन जो रासलीला कृष्ण भगवान ने किए उससे हमको ये सीखना चाहिए कि हमें दूसरे भक्त या दूसरे जीवात्मा को जब भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है उसे देखकर हमें संतुष्टि होना चाहिए। उसे देखकर हमें यह नहीं सोचना चाहिए अरे इसको कैसे भगवान ने कृपा कर दिया, ये तो बहुत ही निम्न स्तर का भक्ति है, ये तो सुबह जल्दी मंगल आरती में उठता भी नहीं है, मंगल आरती में क्या जपा में भी दिखता नहीं है, अरे जपा क्या श्रृंगार आरती में भी आता नहीं है ये व्यक्ति, तो कोई आध्यात्मिक कार्य करते हुए मैं देखता नहीं हूं फिर भी इसे भगवान ने कृपा कैसे कर दिया, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए अरे भगवान ने इसे कृपा कर दिया, चलो बहुत अच्छा है, ऐसे ही इस पर कृपा करते रहने दो, इसे भगवान इसे कृपा वर्षा करते रहने दो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहने दो इसे। ऐसे जब हम सोचेंगे भले ही हम भक्ति अच्छा करते रहेंगे, भगवान चाहेंगे कि जो भक्ति नहीं कर रहा है उसे हम कृपा करेंगे, ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि भगवान स्वयं अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं, भगवान को कोई कमांड नहीं कर सकता, जैसे भगवान का कोई डिमांड नहीं कर सकता, उनसे कमांड कर सकते। इसका मतलब क्या, भगवान से हम बोल नहीं सकते भगवान मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं मुझे कृपा दो, नहीं। भगवान कब कृपा करेंगे, भगवान कृपा तब करेंगे जब वो हमारे कार्यों से संतुष्ट होते हैं। कार्य मतलब क्या, कार्य मतलब हमारी चेतना, हम दूसरों के प्रति कोई अपराध नहीं करते, दूसरों के प्रगति से हम संतुष्ट होते, द्वेष नहीं करते, हम नम्र रहते हैं, सहनशीलता व्यक्त करते हैं, दूसरे को सम्मान देते हैं, खुद की सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हैं। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। एक तृण, तृण को देखेंगे, तृण के ऊपर जब हम पैर रखते हुए चलते हैं तो तृण नहीं बोलता अरे मेरे ऊपर पैर क्यों रख रहे हो, बोलता है क्या, उसके ऊपर पैर रखते चलो वो दबते जाएगा लेकिन हम चल के जाने के बाद फिर से वो खड़ा हो जाएगा। तो तृण जितना नम्र है उससे भी नम्र हमें भक्तों को होना चाहिए, हम जीवात्माओं को होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, जैसे पेड़ देखो, पेड़ छाव देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ी देता है, लोग क्या करते हैं लकड़ी के लिए पेड़ काट देते हैं, तो पेड़ बोलता है कि अरे मैं तुमको इतना कुछ दे रहा मुझे क्यों काट रहे हो, बोलता है कभी, सुना है कभी ऐसे, नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहता है, पेड़ काटते हैं लेकिन पेड़ फिर भी अपना धर्म जो है छाव देना, फल फूल देना, लकड़ी देना इत्यादि जो भी पेड़ की क्षमता है सब कुछ देता है, कभी पेड़ अपने धर्म से चूकता नहीं है, सब सहन करते हुए मानव जाति को सब कुछ देता है वो। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, कोई मुझे सम्मान दे कि नहीं दे, न दे मैं सबको सम्मान दूंगा, अरे ये तो मेरे तरफ देखता भी नहीं है मैं भी नहीं देखूंगा, चलो ऐसे नहीं, अरे भले ही ये मेरे तरफ न देखे, भले ही ये मुझे सम्मान न दे पर मैं इसे सम्मान दूंगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ये सनत कुमार प्रभु कह रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब वो चौपाटी का जब मंदिर का स्थापना कर रहे थे तब स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे जो उनके प्रति उनके अंदर में एक महाराज के प्रति एक आदर नहीं था, तो महाराज को देखकर वो सम्मान नहीं करते थे, उनको देखते अदृश्यमान करते हुए जाते थे, मत देखते उनके तरफ देखते भी नहीं थे, उनको दंडवत कर नमस्कार करना, सन्यासी को जब देखते हैं पहले प्रणाम करना चाहिए, तो वो तो नमस्कार तो छोड़ देखते तक नहीं थे, लेकिन महाराज सन्यासी होते हुए भी वो उनको पहले नमस्कार करते थे, फिर उनको देखकर वो नमस्कार करते थे। तो इसे भी कहते हैं अमानिना मान देना, खुद की मान की अपेक्षा मत करो, दूसरों को मान दो। तो भगवान ये देखते हैं, तो भगवान हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम किस तरह से नम्र है, किस तरह से सहनशीलता व्यक्त करते हैं, किस तरह से दूसरों को सम्मान दे रहे हैं, भले हमें मान न दे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में आखिरी श्लोक में कहते हैं क्या, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यता तथा वा विददातु लंपटो मत प्राण नातस्तु स एव नापरः। मतलब भगवान को भक्त कह रहा है चैतन्य महाप्रभु अपने कह रहे हैं कि कैसे भक्त होना चाहिए, उसका उसका एटीट्यूड, उसका जो मानसिकता कैसी होनी चाहिए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा, भगवान आप मुझे अपने पैरों के नीचे रखकर कुचल दो। जैसे एक चींटी होती है, जिसको चींटी का उस जीवात्मा, चींटी में भी एक जीवात्मा है कि नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके प्रति कुछ पता ही नहीं है, तो चींटी को देखेंगे पैर से कुचल डालेंगे ना, क्योंकि वो चींटी को सोचेंगे क्या है, चींटी क्या है, एक छोटा सा जीवात्मा, क्या है उसमें, कुछ है क्या, उसको कुछ वैल्यू है क्या इस भौतिक जगत में। नहीं, ममय वामशो जीव लोके जीव भूत सनातना, सब जीवात्मा जो है चीटी से लेके ब्रह्मा तक जो सृष्टि के निर्माण करता है सब भगवान के अंश है। तो सब भगवान के अंश होने के नाते सबको हमको सम्मान देना चाहिए, सब हम भाई भाई है। भगवान क्या कहते हैं, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका पिता हूं, मुझसे सब कुछ निर्माण होता है। जब भगवान ऐसे कहते इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एक ही परिवार में दो बच्चे, दो या समझो चार पांच बच्चे हैं एक ही परिवार के, एक ही माता पिता के, तो बड़ा बेटा बोलेगा ये छोटा बच्चा या छोटा है, चलो इसको मारता हूं मैं, तो माता मानेगी क्या, नहीं मानेगी ना, बोले क्यों मार रहे भाई, वो भी तेरा भाई है, छोटा है तो क्या हो गया, मारना है क्या। उसी प्रकार भले छोटी चींटी हो या बड़ा ब्रह्मा हो, सब भगवान के भक्त है, भगवान के अंश है, बच्चे हैं। तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई चींटी को पैर से कुचल दे, भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आश्लिष्य वा भक्त, लेकिन ये भक्त क्या करे, चैतन्य महाप्रभु के आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, आप भगवान मुझे पैरों से कुचल दो, आदर्शनान मर्महताम करोत्वा, मुझे आदर न दो, मुझे अनदेखा कर दो। यथा तथा वा विदधात लंपरा, जिस तरीके से भी आप मुझे व्यवहार करेंगे मेरे से, भले मुझे रेस्पेक्ट दो, ये मुझे मान दो या मेरा अपमान करो, मुझे गाली दो, मुझे मारो पीटो, कुछ भी करो, मत प्राण नातस्तु सैव नापरः, आप मेरे हमेशा मेरे हृदय के प्राण नाथ रहेंगे, आप मेरे प्रिय भगवान हमेशा आप ही रहेंगे, है कि नहीं। भगवान के पास जाएंगे, आपकी भौतिक कामना है जो भी इच्छा है भगवान के पास प्रकट करेंगे, भगवान मैं आज ये चाहता हूं कि आज मैं जब घर जाऊं मेरे घर पे मुझे सुख शांति समृद्धि रहे, भगवान मैं आज आपके द्वार पे आया हूं आपके सामने नतमस्तक होकर ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मुझे सुख शांति समृद्धि रहे, मेरे घर में अशांति ना हो, मेरे घर पे झगड़े ना हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम घर पे गए और घर जाते ही युद्ध चालू हो गया। तो क्या करेंगे आप लोग, मन में क्या लगेगा आपको, अरे ये क्या भगवान के मंदिर में गया और ऐसा नतीजा निकला, तो मैं आज से भगवान के मंदिर जाऊंगा ही नहीं। ऐसा नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास रखकर हमें क्या करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति करते रहेंगे तो भगवान देखेंगे अरे ये तो निष्ठापूर्वक मेरा भक्ति कर रहा है, तो एक न एक दिन हम पर कृपा करेंगे वो विश्वास रखते हुए। इसलिए भगवान क्या करें, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमा मादर्शनान मर्महताम करोत्वा यता तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनातस्तु स एव नापरः। ये ही है गोपियों का भाव, राधा का भाव, यही है सखी भाव। वो कृष्ण को कह रहे हैं आप मुझे जैसे भी व्यवहार करो, आप मुझे अनदेखा कर दो, आप मुझे ठोकर मार दो। जैसे आप देखेंगे कृष्ण भगवान में वृंदावन में कितने साल तक लीला की, 11 बरस, और कृष्ण भगवान चले गए द्वारका मथुरा, फिर गोपियों का आकर देखा तक नहीं। क्या गोपियों ने कृष्ण को टुकड़ा दिया, सिर्फ 11 साल हमारे साथ लीला की, उसके बाद सिर्फ द्वारका और मथुरा वासियों का ही उन्होंने कृपा की, हमारे ऊपर कृपा की नहीं। ये कौन कृष्ण है, ये तो बस क्या धोखेबाज है, ये ऐसे कर टुकड़ा दी क्या? नहीं, अंतिम क्षण तक जब उनके शरीर पर अंतिम सांस थी तब तक वो कृष्ण का ही नाम स्मरण करते थे, कभी कृष्ण को बोले नहीं। तो एक श्लोक आता है, या दोहने वहनने मतनोपलेपा प्रेंकांखनारह रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त दियोश्रु कंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त याने। गोपियां जब कृष्ण चले गए थे मथुरा वृंदा मथुरा द्वारका चले गए थे, वृंदावन में गोपियां ग्वाल बाल सब लोग अपने अपने कार्य तो कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ दिया, चलो कृष्ण छोड़ के चले गए हम क्यों अभी कुछ कार्य करें, नहीं, वो अपने कर्म कर रहे थे। पर कर्म करते करते क्या करते थे वो, हाँ, भगवान का स्मरण करते थे। वो माखन निकाल रहे हो या घर का साफ सफाई कर रहे हो, बच्चे का पोषण कर रहे हो, गाय से दूध निकाल रहे हो, जो भी कार्य कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, गायन्ति चैन मनुरक्त दियोश्रु कंठ्यो, नित्य भगवान का स्मरण करते थे। कैसे भगवान 3 महीने के थे तो पूतना का वध किया, फिर भगवान ने कैसे तृणव्रत का वध किया, वो अपने ही भाषा में व्रज भाषा में वो गाते थे। सोचे व्रज स्त्री गोपियां कौन थी, एक अनपढ़ गवार स्त्रियां थी, वृंदावन में अनपढ़ गवार स्त्रियां थी, उनको कुछ उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन जो वो गाते थे, जो व्रजभाषी व्रजभाषा में जो वो भगवान की स्तुति करते हुए गुणगान करते हुए जो वो गाना गाते थे, वो भगवान को वेदों के जो शब्द है उससे भी परम शब्द लगता था। तो ये भगवान के व्रज गोपियों का व्रजवासियों का जो ग्वाल बाल है जो गाय को चरने के लिए लेके जाते थे, चरते समय क्या करते थे, वो भगवान का स्मरण करते थे। तो व्रजवासिया गोपियां हमको ये दिखा रहे हैं कि हमको जब भगवान की भक्ति करना है हमें कुछ छोड़ना नहीं है। जनरली लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे भगवान का भक्ति करना है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, हमें कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है अपने जीवन में। जोड़ना है मतलब क्या, जो भी कार्य कर रहे हैं कृष्ण के लिए कीजिए, स्वयं की इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की इंद्र तृप्ति के लिए। जैसे गोपियों ने की, भगवान को क्या पसंद आता है वो सोचते वो कार्य करते थे। तो इस प्रकार से ये गोपियों का भाव है। तो शरद पूर्णिमा के दिन हमें इस भाव से भगवान को हर कार्य करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गोपी, ठीक है कुछ लोग बोलेंगे अरे गोपियां कृष्ण ने तो बहुत सारे गोपियों के साथ रास रचाई है, चलो मैं भी बहुत सारे स्त्रियों के साथ नाचता हूं। अरे उसके पहले कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाई थी अपने बाएं हाथ पे एक छोटे से उंगली में, क्या आरोप कर सकते हैं, करके दिखाओ उसके बाद गोपियों के स्त्रियों के साथ नाचो, वो तो नहीं कर सकते। खाली एक चीज को नकल करेंगे दूसरा चीज नकल नहीं करेंगे। हाँ तो मतलब कृष्ण को हमको नकल नहीं करना चाहिए। कृष्ण भगवान अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वरों के परम कौन है, कृष्ण, जो कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप। सत मतलब पूर्ण सत्य, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब पूर्ण ज्ञान, सच्चिदानंद स्वरूपम अनादिराधिर, उनके पहले कोई नहीं है, आदि भगवान कृष्ण है, अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मंदिर जो देख रहे हैं, सबके कारण वही है, अनादिराधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भगवान कृष्ण है। तो इस भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, जैसे व्रजवासिया गोपियां दिखा रही है। तो छोटे से कार्य भी, छोटा छोटा कार्य भी करेंगे तो भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे एक कहानी आता है, जैसे कार्तिक मास में आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि भगवान को दीप दिखाना चाहिए, घी का दीप जब दिखाएंगे भगवान उसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बार एक मंदिर में एक छोटा सा चूहा था, तो मंदिर में भगवान को दीप लगाया गया था, कार्तिक का मास था, कार्तिक के मास में वो दीप लगाए थे और वो जो वाती होती है घी में डुबाकर भगवान को अग्नि जलाकर भगवान को दीप लगाया गया था, लेकिन जैसे अग्नि जलते रहता है, अग्नि थोड़ा थोड़ा कम होते, वाती कम होते गया, तो वो वाती बुझने ही वाला था। तब उस समय वहां पर वो चूहा आ गया और वो चूहा को घी का सुगंध आने लगा, तो वो किधर घी का सुगंध को पीछा करते हुए वो सीधा गया उस दीप पर। दीप पर जाकर वो घी खाने लगा, वो जो वाती में घी था घी खाने लगा धीरे 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 धीरे। जब घी आ रहा था उसको अपने खुद के शरीर के बारे में कुछ चिंता नहीं थी, वो सिर्फ घी खा रहा था। पर उसको पता नहीं था उसका पूंछ ऐसे घूमकर वो जहां पर अग्नि है उसके सामने खड़ा है, तो अग्नि उसके पूंछ पे लग गई। जैसे पूंछ पे अग्नि लग गई वो घूमने लगा, चिल्लाने चीखने दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते अब धीरे धीरे उसके अग्नि पूरे शरीर पर जलकर उसको वो चूहा मर गया। लेकिन चूहा मरने के बाद भगवान ने उसको क्या किया, अपने वैकुंठ धाम पर बुला लिया। अरे ऐसे कैसे हो गया, वो तो भगवान का दीप खाने के लिए आया था, भगवान को उल्टा नष्ट करने के लिए आया था, दीप को खाने के लिए आया था। लेकिन भगवान ने क्या देखा, कार्तिक मास में वो बेचारा घी तो खा ही रहा था और उसके जब पूंछ में आग लग गई और वो घूम रहा था, तो भगवान ने देखा ये तो मेरे लिए दीप चढ़ा रहा है, दीप चढ़ा रहा है सोचकर भगवान ने उसको कार्तिक मास में घी खाते हुए ये मुझे दीप चढ़ा रहा है देखकर भगवान ने उसको वैकुंठ प्रदान कर दी। तो भगवान देखे कितने कृपालु है, छोटे से छोटे कार्य करने से भी हमको कृपा कर देते हैं। लेकिन हमारे तरफ से चेष्टा होनी चाहिए। सुमातु स्विन्न गात्राय विश्रष्ट कबर सज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम स्व आसीत कृपयासीत स्वबंदने। तो यहां पर कार्तिक मास में बहुत ही मधुर लीला हुई थी, वो है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला, दामोदर भगवान का नाम क्या है, दामोदर। दामोदर नाम कैसे पड़ा, दामोदर इसलिए नाम पड़ा ये कहानी की वजह से, ये लीला की वजह से। एक बार कृष्ण भगवान अपने घर पे, माता यशोदा के घर पे, नंद महाराज के घर पे सो रहे थे और माता यशोदा अपने माखन निकाल रही थी, दही से निकालते समय माता ने अपने घर पे स्टोव में क्या किया था, पद्मगंधा दूध का, दूध को उबाल रही थी। पद्मगंधा जो है, माता स्वयं कुछ गिने चुने गायों से दूध निकालकर, अपने हाथों से दूध निकालकर वो कृष्ण के लिए उसको उबाल के फिर वहां से उसे दही बनाकर उससे मक्खन बनाकर अपने हाथों से बनाकर देती है। माता यशोदा नंद महाराज वृंदावन के राजा और रानी थे, तो उनके पास बहुत सारे नौकरानियां थी, तो खुद नौकरानियों को या काम वालों को बोलकर वो बना सकती थी दूध दही सब, लेकिन कृष्ण के लिए माता यशोदा स्वयं ये कार्य करती थी। तो एक बार जब वो कार्य कर रही थी तो कृष्ण को आवाज सुनाई दिया, माता यशोदा मक्खन निकाल रहे, तो उठकर आ गए और माता यशोदा के गोद पर बैठकर स्तनपान करने लगे। तो करते करते माता यशोदा का याद आया, अरे पद्मगंधा दूध तो मैंने स्टोव पे रखा है, तो उबल कर अभी नीचे गिरने वाला है, और माता यशोदा का एक भी बूंद उसका नुकसान नहीं करना था। तो तुरंत कृष्ण को नीचे रखते हैं और भाग कर जाती है वो स्टोव को बंद करने। तो कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, अरे मैं जब यहां पर दूध पी रहा हूं मुझसे ज्यादा वो दूध क्या बहुत महत्वपूर्ण है क्या, मुझे छोड़कर वो दूध के पीछे गई माता यशोदा। तो कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ जाता है, वो क्या करते हैं, पत्थर लेकर जो माता यशोदा मक्खन निकाल रही थी दही से, उस मटके को फोड़कर उसके दूध दही मक्खन सब नीचे गिरा देते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। उनको मालूम है, माता यशोदा को मालूम पड़ा तो मारेगी मुझे, सीधा भागते हैं अंदर के कक्ष में जाते हैं। अंदर के कक्ष में जाकर वहां पर बड़े बड़े मटके पर, देखिए ऊपर यहां पर बड़े बड़े मटके पे ऊपर मक्खन लगाया गया है, ऊपर आपके ऊपर देखिए। तो कृष्ण भगवान वो मक्खन लेकर खुद तो खा ही रहे थे, कृष्ण भगवान अपने प्रिय बंदरों को भी खिला रहे थे। तो वहां पर बंदर आ गए, तो बंदरों को बोल रहे थे आप भी खाओ, तुम भी खाओ मक्खन, खिला रहे थे। माता यशोदा स्टोव को ऑफ कर आती है, गैस को ऑफ कर आती है और देखती है किधर गया कृष्णा, और ये क्या हो गया, मटका पूरा फूट गया, मक्खन बाहर निकल गया। तो देखती है, लेकिन कृष्ण क्या करते हैं, अपने पैरों के चिन्ह छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि मक्खन के ऊपर, दही के ऊपर पैर रखे रहते हैं और वहां से धीरे धीरे चल के जाते हैं। तो मक्खन के पैर से, उनके पैरों का चिन्ह से माता यशोदा को पता चल जाती है कौन से कक्ष में गए कृष्ण। तो माता यशोदा पीछे पीछे आती है और देखती है कृष्ण भगवान मक्खन चुरा के खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे। इतना इतना मेहनत करके वे पद्मगंधा दूध से निकाला हुआ मक्खन, स्वयं माता यशोदा निकाला हुआ मक्खन वो बंदरों को खिला रहे देखकर माता यशोदा गुस्सा आ जाता है। तो बाजू में एक छड़ी रहती है, छड़ी को उठाती है, छड़ी को उठाकर कृष्ण भगवान के पीछे, तो छड़ी को उठाती है और धीरे धीरे कृष्ण को पकड़ने के लिए धीरे धीरे पीछे आती है ताकि कृष्ण को पता नहीं चले वो आ रही है करके। लेकिन बंदर मतलब कृष्ण, माता यशोदा पीछे से आ रही है और कृष्ण भगवान यहां मक्खन उठा के खा रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं और सामने बंदर बैठे हैं और वो भी मक्खन खा रहे हैं। तो कृष्ण को मालूम नहीं पड़ता कि माता यशोदा चुपके चुपके पीछे से आ रही है, लेकिन अचानक वो देखते हैं कि बंदर के आंखों में कि माता यशोदा, बंदर के आंखों से देखते हैं कि कृष्ण माता यशोदा पीछे से आ रही है, तो तुरंत वो भागना चालू कर देते हैं। तो जैसे भागना चालू करते हैं माता यशोदा छड़ी लेकर उनके पीछे पीछे भागती है, पीछे पीछे भागकर आती है। तो कृष्ण क्या सोचते हैं, चलो घर के अंदर तो माता मुझे मारेगी, लेकिन मैं बाहर भाग गया तो पब्लिक के सामने तो मेरा अपमान नहीं करेगी, क्योंकि वो रानी है, रानी थोड़ी किसके बाहर आकर ऐसे मारना खुद के बच्चों को मारेगी, तो थोड़ा कंपोज्ड रहेगी, थोड़ा अपने आप को वश में रखेगी, ऐसे सोचकर कृष्ण बाहर जाते हैं। लेकिन माता यशोदा छोड़ती नहीं है, माता यशोदा सोचती चलो इस बार तो सबक सिखा के रहना चाहिए इसे, तो छड़ी लेकर सीधे पीछे भाग भाग कर आती है। आजू बाजू के गोपियां गोपगण और कृष्ण के मित्र ग्वाल बाल सब लोग बाहर आ जाते हैं, देखते क्या हो रहा है कृष्ण नंद महाराज के आंगन में, सब लोग आकर देखने लगते हैं। और माता यशोदा भाग रही है, उनके बालों से फूल नीचे गिर रहे हैं, और लेकिन अभी कृष्ण भगवान कौन है, कृष्ण भगवान पूरे विश्व के निर्माता सर्व कारण कारणम, उन्हें कोई वश में कर सकता है क्या, कोई वश में नहीं कर सकता। लेकिन माता यशोदा के परिश्रम को देखकर वो अपने वश में आ जाते, उनके वश में आ जाते। वही श्लोक कहता है स्वमात्मस्मिन् गात्राय विश्रस्य कबरस्वज, अपने खुद के माता को देखते हैं वो भाग भाग के आ रही है उनके पीछे, उनके माथे पर पसीने के बिंदु आ गए हैं और उनके बालों से फूल गिर रहे हैं। तो ये देखकर उनको क्या लगता है, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण देखते हैं अरे मेरी माता परिश्रम कर रही है, कृपयासीत स्वबंधने, तो अपने माता के वश में आने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो मतलब कृपा, भगवान ने कृपा कब की माता यशोदा के ऊपर, जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा ने कुछ परिश्रम की है। तो उसी प्रकार जब हम परिश्रम करेंगे भगवान के लिए, भगवान को भक्ति करने के लिए हमारी ओर से कुछ कार्य करेंगे, भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान कृपा देंगे, नहीं तो भगवान कृपा नहीं देंगे। ये यथा माम प्रपद्येते ताम सतैव भजाम्य हम, हम भगवान के प्रति एक कदम उठाएंगे तो भगवान अपने प्रति एक कदम उठाएंगे, अगर हम कदम नहीं उठाएंगे चलो भगवान आप ही कृपा करो, आप आने तब मैं इंतजार करूंगा, तो आप इंतजार करते बैठेंगे भगवान आएंगे नहीं, आपको आपके तरफ से अपने को एक अपने तरफ से एक कदम उठाना पड़ेगा तो भगवान फिर एक कदम उठाएंगे। तो यहां पर इसलिए कहते हैं दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, अपनी माता, स्वयं माता कौन है, पूर्ण परब्रह्म भगवान परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की मां यशोदा, उनको भी वो परिश्रम करना पड़ा कृष्णा का कृपा पाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हाँ मैं तो माता हूं, कृष्ण की माता हूं, तो मुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं, अपने आप कृपा मिल जाएगा, नहीं। सुमात स्विन्नु गात्राय विश्रष्ट कबर सृज दृष्टा परिश्रमम कृष्ण, परिश्रम करना पड़ा उनको भी, तो उसी प्रकार हमें भी परिश्रम करना पड़ेगा। मंदिर है, अरे मंदिर तो है ना, मेरे हृदय में भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है उधर भी मंदिर है, सब जगह मंदिर है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, नहीं, मंदिर बनाया है भक्तों को आकर अपना कृपा भगवान के प्रति कृपा प्राप्त करने के लिए। मंदिर क्यों है, ताकि आप चलकर आओ, थोड़ा परिश्रम करो, जहां भी आपका घर है वहां से अपने पैर बाहर निकालो, चलकर आओ, थोड़ा परिश्रम करो। गंगोत्री में भी रहते हैं, यमुनोत्री में रहते हैं, राधा नगरी में किधर भी रहते हो, थोड़ा पैर निकाल कर आओ, बाहर निकालो, चलकर आओ। दृष्ट्वा परिश्रमम, ये परिश्रम है तो ये खुद बहुत बड़ा परिश्रम नहीं है, छोटा बस परिश्रम है। सिर्फ घर के बाहर पैर निकल कर आना है और भगवान के सामने आकर खड़े होना है। तो भगवान के सामने अगर खड़े होकर क्या करना है, प्रार्थना करना है, नतमस्तक होना है, नमस्कार करना है। ऐसे नहीं कि भगवान के सामने आकर खड़े हो गए, अरे वाह बहुत अच्छा है दृश्य। जैसे अभी हम कभी कोई लोनावाला खंडाला किधर जाएंगे या कोई साइट सीइंग पे जाएंगे तो वहां पर जाएंगे, अरे बहुत अच्छा दृश्य है चलो फोटो निकालो। दृश्य देखा, फोटो निकाला, आ गए मंदिर में आए, अरे बहुत अच्छा मंदिर है फोटो निकालो, आओ निकलो। नहीं, मंदिर में आना है तो मंदिर में शरणागत होना है। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। शरण कैसे करना है, नतमस्तक होना है हमको भगवान के सामने आते ही। कैमरा फोटो बाद में निकाल सकते हैं, उसको बाजू में रखो, पहले भगवान के सामने आते नमस्कार करो। पहले नमस्कार का, नमस्कार करने का मतलब क्या है, नतमस्तक होना, मतलब भगवान मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपका एक दास हूं, मुझे स्वीकार करो, और कुछ करना नहीं है, नतमस्तक तो करो। एक छोटा सा एक परिश्रम है तो मंदिर तक आना, नतमस्तक होना, नमस्कार करते हुए भगवान को, भगवान आप सर्वश्रेष्ठ है, मैं एक तुच्छ जीवात्मा हूं, ऐसे हम इदम कृष्णाय इदम न मम, सब कुछ आपका है मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसे इस भाव से जब हम भगवान के सामने नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान अपना कृपा जरूर देंगे। कृपयासीत स्वबंधने, वो कृपा करते हुए अपने आप को न्योछावर कर देंगे अपने भक्त के प्रति। जैसे भगवान ने अर्जुन के लिए क्या किया था, अपना रथ, अर्जुन का रथ हाका था कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो रथ सारथी बने थे। सारथी का मतलब क्या, तो भगवान अर्जुन के पैरों के लात खाने के लिए। सारथी मतलब सारथी जब रथ चलाता है तो ऊपर खड़े हुए जो व्यक्ति होता है, योद्धा होता है, उसको डायरेक्शन दिखाना होता है, आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, स्ट्रेट जाना है, तो कैसे बताएगा, उनके पास उतना टाइम नहीं है, शत्रु बाण पे बाण चला रहा है, टाइम नहीं है, अरे लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, नहीं उतना टाइम नहीं है उनके पास, तो पैरों से हाँकते हैं, लेफ्ट में जाना है तो पैर से लात मारते हैं, लेफ्ट में जाओ, राइट जाना है, राइट से जाना है, राइट से मारते हैं, राइट में जाओ, सीधा जाना है तो सीधा मारेंगे, स्ट्रेट जाओ। तो सोचो भगवान कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन का लात खाने के लिए, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने परिश्रम किया था भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान के सामने नतमस्तक हो गया था। हाँ, तो उसी प्रकार अगर हमको भगवान, तो भक्त जो होता है बड़ा भगवान से भी बड़ा हो जाता है, जब भगवान को शरणागत हो जाता है तभी, तब तक हाँ तो भगवान, भक्त भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हाँ इस कार्तिक मास में हमें एटलीस्ट, बहुत ही पवित्र मास है कार्तिक मास, श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है, तो ये मास कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। दामोदर लीला जो हुआ था, कृष्ण कृष्ण भगवान को राधा रानी ने, माता यशोदा ने अपने रस्सी से कृष्ण को बांधा था, तो रस्सी मतलब दाम, कहां बांधा था, पेट पे बांधा था उधर, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। तो दामोदर मास, ये कृष्ण कार्तिक मास जो है दामोदर मास, क्योंकि दामोदर लीला हुआ था, और इस मास में राधा रानी कृष्ण की बहुत ही प्रिय है, तो राधा रानी बहुत प्रिय होने के नाते हमें हर दिन कृष्ण भगवान के लिए कुछ ना कुछ भक्ति, एटलीस्ट घर पर आप बैठे हैं, मंदिर हर दिन नहीं आ सकते तो घर बैठे उठ बैठे कृष्ण भगवान को दीप चढ़ाइए, 3 बार 4 बार 7 बार दीप चढ़ाइए, भगवान को नमस्कार कीजिए, इससे आपको भगवान राधा रानी का, कृष्ण का बहुत कृपा मिल जाएगा और आप भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इस बहुत ही पावन शुभ अवसर आज शाम को यहाँ पर दिव्य दर्शन आपको देखने को मिलेगा, अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर आप 5:30 बजे जब आप यहाँ पर आएंगे, ये बहुत ही दिव्य, पूरा वृंदावन यहाँ पर आ चुका होगा, पूरा वृंदावन, चंद्रमा भी आ जाएगा यहाँ पर, पूर्ण चंद्रमा, वो भी सब कुछ यहाँ पर आपको इस ऑल्टर में दिखाई देगा। राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए भक्त लोग परिश्रम कर रहे हैं, यमुना जी, चंद्रमा, वृंदावन सब इस ऑल्टर में लाकर समावेश कर देंगे, और ऐसे दिव्य दर्शन को आपको देखने के लिए शाम को 5:30 बजे तक रुकना पड़ेगा। फिर वो दिव्य दर्शन करके भगवान को जब घी का जो दीप जब हम चढ़ाएंगे, तो 7 बजे दामोदर अष्टकम होगा, दामोदर अष्टकम के बाद सबको दीपदान दिया जाएगा, सब दीपदान कर सकते हैं। आज पहला दिन है तो पहला दिन से आप शुरुआत कीजिए। जो जो यहाँ पर रहते हैं वो तो उनको तो हर दिन का सौभाग्य है, जो यहाँ नहीं रहते हैं जो अपने घर पर रहते हैं, घर पे कृष्ण को हर दिन आप एक दीप चढ़ाने का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट ये एक महीने तक, आज से लेके नवंबर 8 तारीख तक ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आपको भगवान का कृपा मिल जाएगा। हरे कृष्णा। श्री दामोदर मास की, शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे श्याम।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान।